नमस्कार भारत, 10 नवंबर दिन मंगलवार, मैं हूं संदीप सोनी। रूसी एथलेटिक्स पर संकट के बादल, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा।
Russia has to be excluded from the Olympic Games, from the World Championships, at least in the next year. Otherwise, they don't understand the message.
ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी, इधर बिहार में हार के बाद शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी नेताओं के निशाने पर।
बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी ने उस समय पर बयान दिए और उस पैकेजिंग के वो हिस्सा बन गए। पार्टी निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी।
चुनावी जुमले कैसे बदल देते हैं सियासी हवा, सलमान रावी की विशेष रिपोर्ट। समाचार पत्रों की सुर्खियां और खेल की खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के स्वतंत्र आयोग ने सिफारिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में रूस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। रूस पर आरोप है कि वह अपने खिलाड़ियों की डोपिंग यानी नशे की लत को एक तरह से बढ़ावा देता है। विश्व एथलेटिक्स के प्रमुख सेबास्टियन को ने कहा है कि रूस को इन आरोपों का इस हफ्ते के अंत तक जवाब देना चाहिए। इन आरोपों पर नाराज होकर रूस के खेल विभाग के अधिकारी ने कहा कि ये आरोप मूर्खों ने तैयार किए हैं। वहीं रूस के खेल मंत्री ने कहा कि प्रतिबंध लगाना समस्या का हल नहीं। उधर जर्मनी की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मैनेजर योशिम लो ने कहा है कि वो देश की फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख वोल्फगांग नीसबाश के इस्तीफे से दुखी और हैरान हैं। 2006 में विश्व कप का आयोजन जर्मनी को दिए जाने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था फीफा को रिश्वत दी थी। इन आरोपों का सामना कर रहे नीसबाश ने इस्तीफा देते हुए माना कि उन्होंने फीफा को $70 लाख दिए थे, लेकिन इसका उन्हें कोई अपराध बोध नहीं है। अमेरिका ने म्यांमार की जनता से अपील की है कि वो धीरज रखें और रविवार को हुए चुनावों के अंतिम नतीजों का पूर्वानुमान न लगाएं। चुनाव के अंतिम नतीजे आने में अभी कई दिन लगेंगे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉश अर्नेस्ट ने कहा कि हालांकि म्यांमार में चुनाव ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण रहे, लेकिन लोकतंत्र हासिल करने की दिशा में ये महज पहला ही कदम है।
We're seeing initial reports of results, but we encourage everyone to wait for the...
हम चुनाव के आरंभिक नतीजे देख रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि वो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग के आधिकारिक नतीजों का इंतजार करें। लेकिन एक बात तो साफ है कि म्यांमार के लाखों लोगों ने पहली बार एक सार्थक और प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव में भाग लिया। हम मानते हैं कि रविवार को हुए चुनाव म्यांमार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम था। ये थे जॉश अर्नेस्ट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका ने जॉर्डन की एक पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में हुई गोलीबारी की घटना की सख्त निंदा की है। इसमें कम से कम 5 लोग मारे गए। मरने वालों में 2 अमरीकी और 1 दक्षिण अफ्रीका का नागरिक था। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इस घटना को कायरतापूर्ण काम बताया। राजधानी अमान के पास अमरीकी वित्तीय सहायता प्राप्त इस प्रशिक्षण केंद्र में जॉर्डन के एक पुलिसकर्मी ने अचानक अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। बाद में हमलावर को गोली मार दी गई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने बुरुंडी में हाल में ही हुई हत्याओं की निंदा की है और तत्काल हिंसा खत्म करने का आह्वान किया है। बुरुंडी में हिंसा पर बात करने के लिए फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी बुलाई है। जो लोग राष्ट्रपति नंकुरुनजीजा के विरोध में हैं, उन्हें हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है। यह हिंसा अप्रैल में राष्ट्रपति के तीसरी बार चुनाव में खड़े होने के विरोध के बाद शुरू हुई थी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में अभिवादन स्वीकार करिए संदीप सोनी का। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा की एक रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए रूस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वाडा की ये रिपोर्ट रूसी खिलाड़ियों पर डोपिंग मामले की लीपापोती और जबरन वसूली के आरोपों की पड़ताल के बाद आई है। रूस ने इस मामले में अपने खिलाड़ियों और अधिकारियों का बचाव किया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए प्रगति सक्सेना से।
द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने मांग की है कि रूस के खिलाड़ियों में फैली नशे की लत के कारण रूस को सभी एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं से निलंबित कर दिया जाए। एजेंसी द्वारा गठित एक आयोग ने कहा कि नशे का सेवन रूसी अधिकारियों की अनुमति के बगैर संभव नहीं था। जांच के दायरे में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संस्था IAAF को भी शामिल किया गया था। इसमें डोपिंग के लिए 5 खिलाड़ियों और 5 कोचों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर भी जोर दिया गया है। रूस की नशा निरोधी एजेंसी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। रूस के खेल मंत्री विताली मुत्को ने कहा कि रूस को प्रतियोगिताओं से बाहर रखना इसका हल नहीं है।
ничего нового, конечно, в этом докладе мы не увидели. Естественно, конечно, мы его внимательно.
मुत्को कह रहे हैं, हमने इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नया नहीं देखा। बेशक हम इस पर ध्यान देंगे और रिपोर्ट में की गई उन सिफारिशों पर फैसले भी किए जाएंगे जो तथ्यों पर आधारित हैं। जब हम रूस जैसे देश में नशे की लत की बात करते हैं तो महज इसे अलग कर देने या किसी खेल के लिए डिस्क्वालिफाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस पर संयुक्त कोशिशों से ही काबू पा सकते हैं। जर्मनी के खोजी पत्रकार हायो ज़ेपेल्ट की रूसी खिलाड़ियों में डोपिंग पर डॉक्यूमेंट्री के बाद ही वाडा ने इस आयोग का गठन किया था। ज़ेपेल्ट का मानना है कि डोपिंग विरोधी संस्थाओं को इस रिपोर्ट में रूस को एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं से निकाले जाने की सिफारिश की पैरवी करनी चाहिए।
रशिया हैज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओलंपिक गेम्स एंड फ्रॉम द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स एट लीस्ट इन द नेक्स्ट ईयर।
हायो ज़ेपेल्ट कह रहे हैं, रूस को ओलंपिक खेलों और विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं से कम एक साल के लिए या एक बार के लिए तो निकालना ही चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक आवश्यक कदम है, वरना तो वो ये संदेश समझेंगे ही नहीं। उन्हें ये समझना ही चाहिए कि खेल के अंतर्राष्ट्रीय जगत में डोपिंग और भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। संदेश तो साफ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खुद वाडा या स्वतंत्र आयोग रिपोर्ट में की गई इन सिफारिशों का पालन कर पाएगा। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो रूस 2016 में होने वाले ओलंपिक में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शामिल नहीं होगा। उधर मॉस्को में ज्यादातर रूसी नागरिक रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि ये विवाद ही राजनीतिक हालात की देन है। ऐसे ही नागरिक मिखेल कोपलोव ने कहा,
мне кажется, этот скандал, возможно, на фоне политических событий разгорелся.
मुझे लगता है कि ये सब राजनीतिक स्थिति की वजह से हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम चैंपियनशिप्स में भाग नहीं ले पाए तो ये तो बहुत दुखद होगा। रूसी एथलीटों पर डोपिंग का संदेह होने के बावजूद साल 2012 के लंदन ओलंपिक्स में रूसी एथलेटिक्स संस्था और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशंस यानी IAAF ने इस तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए। वाडा रिपोर्ट में की गई सिफारिशें तो ठीक हैं, लेकिन उन पर अमल करना इतना आसान नहीं होगा।
रूसी एथलेटिक्स पर संकट के बादल रिपोर्ट सुना रही थी प्रगति सक्सेना। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो खेल से नहीं लेकिन खेल के मैदान से जरूर जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं लंदन के बेम्बली स्टेडियम की, जहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बस 2 दिन बाद शुरू होने वाली यात्रा की तैयारी कई महीनों से चल रही है। BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव कुछ घंटे पहले बेम्बली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ BJP के प्रमुख विजय चौथाई वाले से हुई, जो इंतजामों का खुद जायजा ले रहे थे।
इस वक्त हम लंदन के वेम्बली स्टेडियम में मौजूद हैं। मेरे पीछे फुटबॉल की वो पिच है, वो ग्राउंड है जहां पर तैयारियां हो रही हैं। नरेंद्र मोदी फ्राइडे को यहां पर हजारों लोगों को एड्रेस करने वाले हैं और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर विजय चौथाई वाला मौजूद हैं, जो BJP के फॉरेन अफेयर्स सेल के इंचार्ज हैं। डॉक्टर चौथाई वाला, खास तौर पर आप आए हैं इस इवेंट के लिए, क्या इतना बड़ा जो इवेंट हो रहा है इसको लेकर कितना एक्साइटमेंट है BJP में और कितनी उम्मीदें हैं इससे?
एक्साइटमेंट बहुत है, नॉट ओनली BJP लेकिन पूरे NRI कम्युनिटी में, विश्वभर में जो है वो सब में एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है मोदी जी का कम्युनिटी इवेंट सब जगह, वहाँ जहाँ जहाँ जब वो जाते हैं वहाँ होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, इसलिए एक्साइटमेंट होना स्वाभाविक है।
क्यों इतने बड़े इवेंट की क्या जरूरत थी, मतलब क्या इसके पीछे का लॉजिक क्या है?
क्योंकि भारतीयों की यहाँ संख्या भी अच्छी ज्यादा है, बहुत सालों से, बहुत जनरेशन से भारतीय यहाँ रहते हैं और मोदी जी के बारे में उनके मन में बहुत आस्था है, प्रेम है, उत्साह है और उनके डिमांड से ये हुआ है। हमने ये कार्यक्रम थोपा नहीं है किसी के ऊपर, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए।
तो जितने हजारों लोग मैं सुन रहा हूँ इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोग्राम के पीछे, क्या सब लोग स्वेच्छा से वॉलंटियर्स हैं या क्या, कैसे इसको प्लान करते हैं?
सब वॉलंटियर्स है। हम इसके लिए 3 महीने 3.5 महीने से प्लान कर रहे हैं। करीब 250-300 वॉलंटियर्स पिछले 1.5-2 महीने से दिन रात अपना जॉब ये करते हुए काम कर रहे हैं और आप उसका पूरा सक्सेस 13 तारीख को देखेंगे।
ऐसा सुनने में आया है कि जो स्टेडियम के लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि साहब यहाँ पर एक बहुत अहम फुटबॉल मैच भी होने वाला है, तो इसलिए पिच जो है उसको खास तौर से कोई नुकसान ना हो, तो क्या आप लोग कदम ले रहे हैं उसके लिए?
नहीं, हमने वो पूरी चिंता की है कि पिच के आजू बाजू कुछ हो नहीं, इसलिए वो पूरी तैयारी है, उसके लिए बहुत कुछ चिंता का विषय नहीं है।
ये भी बताया जा रहा है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन यहाँ पर होंगे,
मैंने भी ऐसा सुना है, अगर वो आते हैं तो उनका बहुत स्वागत है, देखते हैं, मुझे पता नहीं है, कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है।
एक आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब, कि जो बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की विजिट हो रही है, थोड़ा सा अगर जीतते तो शायद और
ऐसा है, जब प्रधानमंत्री भारत के बाहर जाते हैं वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर होते नहीं है, इसलिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उसका इस विजिट पे कोई भी परिणाम होने की कुछ भी संभावना नहीं है।
और लगे हाथ हम आपको बताते चलें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 से 14 नवंबर के बीच ब्रिटेन दौरे की खबरें और उन खबरों का विश्लेषण आप तक पहुंचाने के लिए बीबीसी हिंदी ने खास तौर पर तैयारी की है। नमस्कार भारत, आप सुन रहे हैं संदीप सोनी के साथ। रुख करते हैं भारत का, जहां बिहार में जबरदस्त हार के बाद भारतीय जनता पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि ये हार किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी पार्टी की हार है। लेकिन पार्टी के भीतर अपने मुखर विरोधी स्वरों के लिए मशहूर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, उन पर कुछ नेताओं ने सीधा निशाना साधकर एक तरह से ये जता दिया है कि पार्टी के भीतर उठा पटक जारी है। वात्सल्य राय की रिपोर्ट।
बिहार में लगे हार के झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने सोमवार को परिणाम की समीक्षा की। कयासों के उलट संसदीय बोर्ड ने हार के लिए पार्टी के किसी नेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया। सहयोगी दलों के आकलन से अलग बीजेपी नेता ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि चुनाव के दौरान आरक्षण का मुद्दा उठाने और तीखी बयानबाजी से पार्टी को कोई नुकसान हुआ। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हार के कारण बताते हुए कहा,
प्रारंभिक दृष्टि से जो मूल कारण हम लोगों को लगा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के तीनों घटक आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पार्टी अलग अलग से चुनाव लड़े थे। हमें लगता था कि शायद जब गठबंधन होता है तो हर एक घटक अपना पूरा वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करवा पाता, ये तीनों एक दूसरे का अपना टोटल वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे, वो अनुमान और आकलन हमारा गलत था।
संसदीय बोर्ड गठबंधन की ताकत आंकने में नाकामी को हार की वजह बता रहा है, लेकिन पार्टी के कई नेता हैं जो चुनाव के दौरान बागी तेवर दिखाने वाले नेताओं को खराब परिणाम के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। केंद्रीय मंत्री उमा भारती पटना साहिब से पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई के हक में हैं।
बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी ने उस समय पर बयान दिए और उस पैकेजिंग के वो बयान हिस्सा बन गए। पार्टी निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी, हमारी पार्टी में सब वरिष्ठ लोग बैठे हुए इन सब चीजों को देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई सुझाव देने की जरूरत है, क्योंकि उस पैकेजिंग का कोई हिस्सा रहा हो तो कार्यवाही तो होगी ही।
बिहार चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी अनदेखी की बात उठाई थी। इसे लेकर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शत्रुघ्न सिन्हा पर विवादास्पद टिप्पणी की।
ऐसा है कि जब गाड़ी चलती है कुत्ता नीचे चलता है, कुत्ता समझता है गाड़ी मेरे भरोसे चल रही है, तो ये पार्टी कोई एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती है, पूरा संगठन है और यहाँ पर एक बड़ी श्रृंखला है। तो चूँकि हार गए वो सब लोग जो मौन व्रत में बैठे थे बोलने लगे।
उधर शत्रुघ्न सिन्हा खुद को लेकर की जा रही टिप्पणियों से बेपरवाह दिखे। सोमवार को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्हें शुभकामना दी। इस मुलाकात को उन्होंने शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन जानकार मानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी नेतृत्व को संकेत दे रहे हैं कि कार्रवाई के डर से वो अपनी लाइन बदलने को तैयार नहीं है। वात्सल्य राय, बीबीसी दिल्ली।
और अब बिहार में चुनावी जुमलों और उनके असर पर बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की खास रिपोर्ट।
बिहार में हुए विधानसभा के चुनाव में तल्ख टिप्पणियों और जुमलों का जमकर इस्तेमाल हुआ और जानकारों को लगता है कि चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की हार के कुछ कारणों में से एक ये भी बड़ा कारण रहा है। ये सब कुछ डीएनए से शुरू हुआ जब 3 महीने पहले प्रधानमंत्री ने चुनाव के प्रचार की शुरुआत की थी। वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नीतीश कुमार पर निशाना साधना चाहते थे, मगर वो जोश में बोल गए।
लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा सारा पुण्य खींच करके ले लिया भाइयों बहनों। तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़।
बस यहीं से जुमलों का युद्ध शुरू हो गया और नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए इसे बिहार के स्वाभिमान से जोड़ने में जरा भी कोताही नहीं की।
मेरे डीएनए को गड़बड़ कहा? मैं कौन हूँ? मैं आपका हूँ, आपका प्रतिनिधित्व करता हूँ। कहा डीएनए गड़बड़ है? आज बिहार के लोग अपना अपना बाल नाखून काट करके डीएनए जांच के लिए अपना सैंपल इकट्ठा कर रहे, जिनके पूर्वजों का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, वो हमारे डीएनए को चुनौती दे।
डीएनए पर विवाद चल ही रहा था कि इसी बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए गए बयान ने बीजेपी के लिए एक नया सिर दर्द खड़ा कर दिया।
आमची ऐसी सूचना है कि एक अराजकीय समिति करावी, देशातले समाजतज्ञ शिक्षण तज्ञ असे घ्यावेत, सरकारचे प्रशासनाचे राजकीय पक्षांची प्रतिनिधी त्यात असावे।
मोहन भागवत कह रहे थे कि आरक्षण किसी जाति को कितना और कितने दिनों तक दिया जाए, इस पर एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जो इसकी समीक्षा करे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी लगता है कि भागवत के बयान से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर इस प्रयास में वो एक बार फिर जोश में कुछ ऐसा बोल गए जिसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया।
वो क्या करने जा रहे हैं आपको मालूम है? 5% आरक्षण संप्रदाय के आधार पर दूसरे संप्रदाय को देने का इनका षड्यंत्र चल रहा है। रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा और किसी और संप्रदाय के नाम पर देकर के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेगा। मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा।
मोदी के बयान पर नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं।
कोई उनके माइंड में रिजर्वेशन नहीं है, उनके माइंड में पोलराइजेशन का गेम है, लेकिन उसको वो छेड़ इसलिए रहे होंगे कि इससे उनको लगता होगा कि लास्ट डिच एफर्ट कर लो, कहीं इसके नाम पर कुछ पोलराइजेशन तो नहीं।
चुनावी बयानों में सबसे ज्यादा आलोचना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के उस बयान पर हुई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में पटाखे छूटने की बात कही थी।
नीतीश लालू जीते तो परिणाम तो पटने में आएंगे, मगर पटाखे पाकिस्तान के अंदर जलेंगे।
लेकिन चर्चा में तो नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पैरोडी भी रही।
तो वो हवा बताते कि वहीं से हवा चलती है ठंडी। अब हवा पर हमको एक चीज याद आ गया भाई, एक जरा सुनाना चाहते हैं एक कविता। बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो।
बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहां गया उसे ढूंढो।
हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो, कहां गया उसे।
तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो।
लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य हुआ कि नीतीश बाबू ने अपने पहले मुशायरे में भी ये थ्री इडियट का गीत क्यों ले आए। ये थ्री पार्टनर थे ये तो पता था, लेकिन उनको ढूंढ ढाट करके अगर कविता की पैरोडी करने का मन कर गया तो भी थ्री इडियट वाला कर गया, थ्री इडियट वाला कर। वाह नीतीश बाबू वाह, क्या क्या आपका मनोरंजन का खेल है।
वहीं वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हार के पीछे जुमलों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा।
पर प्राइम मिनिस्टर की अपनी जो डिग्निटी है वो उसमें डैमेज हुई है। लालू यादव तो वो तो कॉमिक भी कर सकते हैं, मस्करी भी कर सकते हैं, लेकिन अपने स्तर पे आकर के उन्होंने उनको भी अपने स्तर पे लेके आए, ये इस चाल में मोदी जी फंस गए।
बिहार का चुनाव किसी के लिए मनोरंजन का खेल था या नहीं ये तो पता नहीं, मगर थ्री इडियट्स की तरह ही बिहार में इस बार महागठबंधन की पटकथा जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लिए सुपर हिट जरूर साबित हुई। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली। कहां गया उसे ढूंढो।
लेकिन आज के अखबार आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्या कुछ छपा है आज के अखबारों में बताने के लिए प्रगति सक्सेना स्टूडियो में आ चुकी हैं।
जी संदीप, आज अखबारों की जो पहली हेडलाइन है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि बीजेपी जो है बिहार में हार के बाद उन्होंने समीक्षा के लिए बैठक की और उसके बाद अरुण जेटली ने कहा कि हार की सामूहिक जिम्मेदारी विपक्ष की एकजुटता है, ये हमारे अभी खबरों में भी हमने सुनाया। बीजेपी सांसदों ने मांझी से मिलाया सुर और बोले भागवत का बयान रहा जिम्मेदार, तो ये आपसी एक दोषारोपण चल रहा है,
एक तरह से हार पर भाजपा में रार वाली बात है।
ये हेडलाइन जो आप पढ़ रहे हैं अमर उजाला में है कि बिहार में हार पर भाजपा में रार, और अमर उजाला ने ही शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में भी लिखा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं, हमने भी अभी ये खबर चलाई कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो दूसरे विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं और
गले मिल रहे हैं
और बता रहे हैं कि उन्हें कार्रवाई का ऐसा कोई कारण दिख नहीं रहा है। जो सभी अखबारों में खबरें हैं वो मैं आपको पहले बता दूं कि यमुना में मूर्ति विसर्जन पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कहना है, उन्होंने कहा कि तय जगह पर आप मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं। ओआरओपी पूर्व सैनिक आज से लौटाएंगे मेडल, वन रैंक वन पेंशन। ये ओआरओपी आजकल चलन सा हो गया है कहने का, क्योंकि आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है। जो पूर्व सैनिक हैं वो कह रहे हैं कि अब वो मेडल लौटाएंगे, क्योंकि जो ओआरओपी स्कीम है उसके फॉर्मूले से वो सहमत नहीं
और
है।
ये भी कह रहे थे कि इस बार की दिवाली काली दिवाली मनाएंगे।
BCCI की वार्षिक बैठक में एक बड़े फैसले लिए गए हैं। शशांक मनोहर को ICC का चेयरमैन बना दिया गया है और BCCI ने अपनी ग्रेडिंग भी जारी की है, जिसमें रहाणे ए ग्रेड में आ गए हैं और सुरेश रैना सरकर बी ग्रेड में चले गए हैं, और BCCI की कोशिश है कि अब इसको भ्रष्टाचार से थोड़ा सा सफाई की जाए। और एक खबर ये भी है कि BCCI ये सोच रही है कि क्रिकेट टीम पाकिस्तान की जो है उसे आमंत्रित किया जाए भारत में। ये इंडियन एक्सप्रेस ने खबर ली है कि BCCI अगले महीने पाकिस्तान को आमंत्रित करना चाहती है, लेकिन वो इसके लिए सरकार से पूछेगी। जो दैनिक भास्कर में विशेष रूप से खबर है वो है भागलपुर दंगे के बारे में, कि ज़िला कोर्ट का सबसे पहले मामले में सबसे बड़ा फैसला ये आया है कि सबूत पूरे नहीं मिले हैं, भागलपुर दंगा जो 1989 में हुआ था, इसलिए सभी आरोपियों को रिहाई के आदेश दिए गए हैं। ये केस 26 साल चला और अभी ये रिहाई का आदेश दिया गया है। सहरसा से एक और खबर है दैनिक भास्कर में कि ऑक्सीजन ना मिलने से सहरसा अस्पताल में आधा दर्जन नवजातों की मौत हो गई, परिजनों का आरोप है कि सही समय पर दवाई और ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाए गए, तो सिविल सर्जन ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। पुजारी के बिना शादी अवैध नहीं, ये मद्रास हाईकोर्ट का फैसला है कि पुजारी के बिना अगर शादी होती है तो वो अवैध नहीं मानी जाएगी,
यानी बिना पंडित के साथ
लिए जा सकते हैं। म्यांमार में आम चुनाव, भारी जीत की ओर सूची, ये जनसत्ता में खबर है। और गरीबों को न्याय और समय के साथ बदलाव पर मोदी का जोर, मोदी जो है वो कार्य व्यवस्था पर एक तरह से बोल रहे थे सरकार की। लघु बचत योजनाओं पर घटेगी ब्याज दर, ये भी जनसत्ता में खबर है। और कपारो समूह के CEO अंगद पॉल की पेंट हाउस से गिरकर मौत हो गई है।
बहुत शुक्रिया प्रगति जी इन तमाम खबरों के लिए, और अब एक बार जान लेते हैं प्रगति सक्सेना से ही कि देश दुनिया में आज क्या कुछ हो रहा है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-15 फ्रेंच गुयाना में रॉकेट Ariane 5 से लॉन्च किया जाएगा। इससे भारतीय दूर संचार सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज ICGS समर्थ को औपचारिक तौर पर तटरक्षक बेड़ों में शामिल करेंगे। समर्थ इन बेड़ों में अब तक का सबसे बड़ा पोत होगा। कट्टरपंथियों सहित विभिन्न दलों से जुड़े सिखों के एक धड़े ने अमृतसर में मंगलवार को सरबत खालसा का आह्वान किया है। इसे अकाल तख्त को एक सीधी चुनौती माना जा रहा है। बीते दिनों पवित्र ग्रंथ के अपमान की घटनाओं से पंजाब में तनावपूर्ण हालात रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क के सामने एक पत्र में यूरोपीय संघ में सुधार की योजना पेश करेंगे। ब्रिटेन में यूरोपीय संघ की सदस्यता पर 2017 तक जनमत संग्रह होना है, इसलिए इसे अहम माना जा रहा है। रियाद में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख बान की मून चौथे अरब दक्षिण अमरीकी सम्मेलन के उद्घाटन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य इन दोनों क्षेत्रों के बीच रिश्ते मजबूत करना है।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन में खेले गए पहले टेस्ट मैच के अंतिम दिन कल मेहमान न्यूजीलैंड को 208 रनों से करारी मात दी। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 504 रनों का विशाल लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी पारी 295 रनों पर सिमट गई। हालांकि न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने 80 गेंदों पर 10 चौके और 2 छक्के जमाते हुए 80 रनों की पारी खेली, लेकिन उनके अलावा केवल केन विलियमसन ही थोड़ा टिककर खेल सके और उन्होंने 59 रन बनाए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने आपस में मिलकर विकेट बांटे। स्पिनर नॉर्थन लियन ने 63 रन देकर 3, मिचेल बार्श ने 25 रन देकर 2, जोश हेजल वुड ने भी 68 रन देकर 2 और मिचेल स्टार्क ने 69 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। इस शानदार जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहली पारी में 163 और दूसरी पारी में 116 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर मैन ऑफ द मैच रहे। उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर आज से चाइना ओपन शुरू होने जा रहा है, जहां महिला एकल वर्ग में भारत की साइना नेहवाल को शीर्ष वरीयता दी गई है। पुरुष वर्ग में भारत के श्रीकांत को 5वीं और पी कश्यप को 8वीं वरीयता दी गई है। वैसे पुरुष एकल वर्ग में भारत के एच एस प्रण अजय जयराम और महिला वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में 2 बार की कांस्य पदक विजेता पीवी सिंधु भी अपना दावा पेश करेंगी। पुरुष युगल वर्ग में भारत के मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी तथा महिला युगल वर्ग में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा अपनी चुनौती पेश करेंगी। उल्लेखनीय है कि साइना नेहवाल और के श्रीकांत ने पिछली बार चाइना ओपन का खिताब अपने नाम किया था। वैसे चाइना ओपन में आज क्वालिफाइंग मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं दक्षिण अफ्रीका के हाथों 5 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज में 3-2 से हार के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम ताजा आईसीसी एक दिवसीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। दक्षिण अफ्रीका तीसरे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। उधर मीरपुर में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 58 रनों से हरा दिया। बांग्लादेश की टीम जीत के लिए 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 43.3 ओवर में ही केवल 183 रनों पर ढेर हो गई। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने 33 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर बांग्लादेश ने सलामी बल्लेबाज इमरुल कैस के 76 रनों की मदद से 9 विकेट खोकर 241 रन बनाए थे।
महंगाई के इस जमाने में 5 रुपए में दाल भात और सब्जी कहाँ मिल रही है, ये खबर bbchindi.com पर आप आकर पढ़ सकते हैं। और मिस्र के जो पिरामिड हैं वो किसी ज़माने में अनाज के गोदाम हुआ करते थे, इस पर एक बार फिर चर्चा गर्म हुई है कि क्या वाकई गोदाम हुआ करते थे, उनमें अनाज भरा जाता था। विस्तार से इस खबर को भी आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर आकर पढ़ सकते हैं। और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि 6:58 होना चाहते हैं और इसी के साथ वक्त हो चला है एक बार फिर प्रमुख समाचारों का प्रगति सक्सेना से।
बीबीसी समाचार। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के स्वतंत्र आयोग ने सिफारिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में रूस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उधर जर्मनी की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मैनेजर योशिम लो ने कहा है कि वो देश की फुटबॉल एसोसिएशन के प्रमुख वोल्फगांग नीयुसबाश के इस्तीफे से दुखी और हैरान हैं। अमरीका ने म्यांमार की जनता से अपील की है कि वो धीरज रखें और रविवार को हुए चुनावों के अंतिम नतीजों का पूर्वानुमान न लगाएं। अमरीका ने जॉर्डन की एक पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में हुई गोलीबारी की घटना की सख्त निंदा की है। इसमें कम से कम 5 लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने बुरुंडी में हाल में ही हुई हत्याओं की निंदा की है और तत्काल हिंसा खत्म करने का आह्वान किया है। चाड की सरकार ने लेक चाड क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी है। दो दिन पहले बोको हराम के संदिग्ध आत्मघाती हमले में दो लोग मारे गए थे। आपातकाल से क्षेत्रीय गवर्नर को लोगों और वाहनों की गतिविधि को काबू करने के अधिकार मिल जाएंगे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। ठीक एक घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर।